प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 153। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुरसुर नरपतिवन्द्यने प्रविनष्टगाति कर्मणे, प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने, वरिशेष तीर्थंकरने, सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान गृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने, ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदो आई हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने, अरहंतने सिद्धने नमस्करण करिए दिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने, सुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने, प्राप्ति करू साम्यनी जेनाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजू स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 86 पर हम आ गए, 86। कल हमने 59 नंबर की गाथा और उसका अन्वयार्थ देखा था। अब उसी की टीका अमृत चंद्राचार्य के पहले पढ़ेंगे हम। देखो अन्वयार्थ केवल गुजराती में फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। स्वयं ने पोता थी उपजतु, समंत अर्थात सर्व प्रदेशे थी जानतु, अनंत पदार्थों में विस्तृत विमल अने अवग्रहादि थी रहित एवं ज्ञान एकांतिक सुख छे एम सर्वज्ञ देवे कहूं छे। केवल ज्ञान की बात हो रही है, जिसको हम अति इंद्रिय ज्ञान कहते हैं वो एकांतिक सुख स्वरूप है। टीका, स्वयं उपज तो हुआ थी, कौन कौन से विशेषण लगाए वो यहाँ नंबर करके बता रहे। समंत हुआ थी, अनंत पदार्थों में विस्तृत हुआ थी, विमल हुआ थी अने अवग्रहाती रहित हुआ थी, प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख छे एम नक्की थाय छे। कारण के सुखनु अनाकूलता ज एक लक्षण छे, अनाकूलता ही सुख है। आ वात विस्तार थी समझावामां आवे छे। पर द्वारा उपजतु थकु पराधीनता ने लीधे, अभी ये जो स्वाधीन बताए ना ऊपर, स्वयं उपजतु तो स्वाधीन है और बाकी जो इंद्रिय ज्ञान वगैरह जो कैसे है तो कहते वो पराधीन है और वो दुख रूप है। परोक्ष ज्ञान आकुलतामय है और ये प्रत्यक्ष ज्ञान सुखमय है, अनाकुलता वाला है, ये बात बता रहे। इसलिए इसके प्रतिपक्ष की बात पहले बता रहे, क्योंकि ये सुखमय कहा तो वो दुखमय है, क्यों है उसकी बात हो रही है। देखो, पर द्वारा उपस्तु थकू पराधीनता ने लीधे, असमंत हुआ थी इतर द्वारों ना आवरण ने लीधे, क्योंकि सर्वात्म प्रदेशों से जानना नहीं हो रहा है, कुछ प्रदेशों से हो रहा है और जहां का क्षोभशम है वहां से वो जानना हो रहा है। तीसरी बात, मात्र केटलाक पदार्थों में प्रवर्ततु थकू इतर पदार्थों ने जानवानी इच्छा ने लीधे, यानी कुछ ही पदार्थों को जानता है तो अन्य अन्य चीजों को जानने की इच्छा वैसे रहती है, बाकी रहती है, यानी वो इच्छा के रूपी आकुलता वहां बनी रहती है। समल वहां विमल कहा था, ये समल है, समल हुआ थी असम्यक अवबोध ने लीधे, अवबोध ने ज्ञान, पेज नंबर 86 अमृत चंद्राचार्य की टीका के नीचे दूसरा पैराग्राफ में हम आ रहे हैं और वहां परोक्ष ज्ञान की बात है। ऊपर गाथा में तो प्रत्यक्ष ज्ञान की बात बताई थी, उसके विशेषण बताए थे, उसी विशेषण से उल्टे विशेषण परोक्ष ज्ञान में लगाए थे। एक तो पर द्वारा उपजने के कारण पराधीन है, असमंत है, असमंत है ने एक एक इंद्रियों के द्वारा अपने अपने जहां क्षोभशम है वहां से ग्रहण होता है, जैसे चक्षु इंद्रिय संबंधी वर्ण का ग्रहण उतने ही एरिया में से होता है, वहां के आत्म प्रदेश उसको ग्रहण करते हैं, अन्यत्र नहीं, यानी हाथ से हमको उसका वर्ण नहीं समझेगा, या स्पर्शन इंद्रिय तो स्पर्शन संबंधी ज्ञान होगा, ऐसे एक एक इंद्रिय का अपने अपने विशिष्ट जगह से ही उसका अन्यत्र उसका आवरण है और उस जगह उसका क्षोभशम है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट, मात्र केटलाक पदार्थों में प्रवर्तित थको, सभी चीजों को नहीं जान सकता है, इतर पदार्थों ने जानवानी इच्छा ने लीधे। चौथा पॉइंट, समल हुआ थी असम्यक अवबोध ने लीधे, असम्यक यानी वो सही नहीं जानने में आ रहा है। हाँ, पेज नंबर 86 पांचवा पॉइंट, देखो चौथे पॉइंट में हमने ब्रैकेट में देखा था, कर्म मणवाड़ू हुआ थी संशय विमोह विभ्रम सहित जानवाने लीधे, क्योंकि वो परोक्ष ज्ञान वो कौन सा मिथ्या दृष्टि का लिया था, हमने पहले देखा था पर पदार्थों के परिणाम वाने के अभिप्राय वाला था ना वो, तो कहते के संशय विमोह और विभ्रम सहित जानवाने लीधे, मिथ्या ज्ञान के ये तो तीन पॉइंट है ना, वो लक्षण है उसके, अने अवग्रहादि सहित हुआ थी, ये जो मति ज्ञान जो है और जो इंद्रिय के द्वारा होता है मति ज्ञान, तो उसमें तो अवग्रह इहा अवाय धारणा ये क्रम पड़ता है, तो कहते कि अवग्रहादि सहित हुआ थी क्रमे थता पदार्थ ग्रहण ना खेद ने लीधे, उसमें खेद है क्योंकि जानने की इच्छा जानने में नहीं आ रहा है, एक ही समय में क्रम क्रम से जानना होता है, तो आ कारणों ने लीधे परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल छे, वो आकुलता वाला क्यों है उसकी बात है, पराधीनता है, असमंत है, थोड़े ही पदार्थों को जानता है, और चौथा पॉइंट कौन सा लिया, समल है यानी संशय विभ्रम वगैरह बना रहता है और अवग्रहादि सहित है, ये पांच पॉइंट इंद्रिय ज्ञान के परोक्ष ज्ञान के बताए है, इसलिए वो आकुल है, आकुलता वाला है, अत्यंत आकुल कहा, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान वो तो अनाकुलता लक्षण सुख वाला है। अब ये टीका हुई नहीं, नेक्स्ट पेज पर भी 87 पेज पर, हाँ, यानी पहले में पहले उन्होंने परोक्ष ज्ञान कैसे आकुल है उसकी बात बताई, अब प्रत्यक्ष ज्ञान की बात फिर दोबारा बताते, अने आ प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल छे, कारण के अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव ऊपर, ये ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव, स्वभाव की बात है ना यहाँ पर, वो कब से है स्वभाव, तो अनादि से है, तो अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव ऊपर महाविकास थी व्यापी ने, महाविकास ने केवल ज्ञान की बात ली थी, यहाँ पर परिपूर्ण विकास हुआ है, व्यापी ने स्वतः पोथा थी ज रही हुआ थी, फिर से यानी ज्ञान सामान्य है और उसके वो केवल ज्ञान रूपी विकास हुआ है उसका, और वो स्वयं ही हुआ है, कोई दूसरे के कारण हुआ ऐसा नहीं है। तो पोताथी ज रही हुआ थी स्वयं उपजे छे तेथी आत्माधीन छे। ऊपर पदार्थों के अधीन नहीं है, आत्मा के ही अधीन है। अने आत्माधीन हुआ थी आकुलता थती नथी। कोई चीज पराधीन है तो कितनी आकुलता होती है ना। समझ
प्रश्न हुआ था जो कहा कि आँख से हम देखते हैं, वो जो ज्ञान होता है वो खाली उतने ही प्रदेशों में होता है,
उपयोग रूप ग्रहण वहाँ से होता है, ज्ञान तो पूरे आत्म प्रदेशों में होगा। जानना जो है ज्ञान की पर्याय पूरे आत्म प्रदेशों में हो रही है, वहाँ से उपयोग रूप ग्रहण जी वहाँ से हुआ, ग्रहण वहाँ से हुआ। इसे हाथ से वो वर्ण का ग्रहण यहाँ से नहीं हुआ है, एक ज्ञान की पर्याय, क्योंकि ज्ञान गुण पूरे आत्म प्रदेशों में है, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतनी बड़ी उसकी पर्याय। तो पर्याय कितनी है तो हम कहेंगे पूरी, पूरे आत्मा में ऐसा जानना हुआ कि ये रंग है ऐसा, परंतु उसका ग्रहण कहाँ हुआ, वहाँ से। हमने देखा इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है, जहाँ वो द्रवेंद्रिया बनी है वहाँ के आत्म प्रदेशों के द्वारा अपने अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति वहाँ तैयार होती है, जो इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। यानी उपयोग रूप ग्रहण वहाँ से हुआ, इसलिए कहते बाकी में तो आवरण है, बाकी प्रदेशों से चक्षु संबंधी वर्ण संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा है हमको, वो वर्ण संबंधी ग्रहण जो है उपयोग रूप ग्रहण वो वहीं से होगा। इसलिए भी वो तो यहाँ लिखा ना समंत नहीं असमंत है। हाँ, कान के द्वारा भले यहाँ इंद्रिय है परंतु उसमें वर्ण का जानना नहीं होगा, हाँ वहाँ शब्द का जानना होगा, आँखों से शब्द का जानना नहीं होगा, वर्ण का जानना होगा। ये भी पराधीनता ही है ना, वह भी आकुलता की बात है। और केवल ज्ञान कैसे सर्वात्म प्रदेशों के द्वारा, वो प्रत्येक प्रदेश के द्वारा वो जानना हो रहा है, सबको जानना प्रत्येक प्रदेश के द्वारा हो रहा है। देखो यहाँ 87 पेज पर पढ़ रहे थे हम, ये स्वयं ही उपजता है इसलिए आकुलता नहीं है। दूसरा पॉइंट, समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञानोपयोग रूप थई। देखो ये केवल ज्ञान कैसा है, पूरा ही उपयोग रूप है, और ये इंद्रिय ज्ञान जो कैसा है मति, हाँ लब्धि और उपयोग मिलकर सोक्षम ज्ञान होता है। लब्धि ने वो उघाड़े, उघाड़ तो वर्तमान में है, प्रत्येक ज्ञान के पर्याय में उघाड़ रूप है, तो उपयोग रूप में तो लिमिट है ना, एक इंद्रिय के द्वारा उपयोग चल रहा है तो दूसरे इंद्रिय के द्वारा नहीं हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञानोपयोग रूप थई व्यापी रहेलू होवा थी समंत छे तेथी अशेष द्वारो खुला थया छे। अशेष यानी कुछ बाकी नहीं रहा, अने वो भी क्षायिक है ना, यहाँ तो कोई क्षोभम रूप थोड़ा उघाड़ थोड़ा बंद ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा खुला। अने ए रीते कोई द्वार बंद नहीं हुआ थी आकुलता थती नथी। अब यहाँ द्वार कहने से भी पूरे आत्म प्रदेशों में सब कुछ जानना हो रहा है, वहाँ इंद्रियों में एक एक द्वार के द्वारा एक एक जानना होता था, शब्द को या रस को इस तरह से। तीसरा पॉइंट, समस्त वस्तुओं ना गेयाकारों ने अत्यंत पी गयु होवाने लीधे परम विविधता में व्यापी ने रहेलू हुआ थी अनंत पदार्थों में विस्तृत छे। क्योंकि अनंत तो द्रव्य है, उसके अनंत अनंत गुण है, और हरे की तीनों काल की पर्याय है, इन सब को युगपत एट ए टाइम और भिन्न भिन्न जान रहा है। भिन्न भिन्न क्यों, सबको मिलाकर इकट्ठा है ऐसा नहीं, सबका अलग अलग स्वरूप उनके ज्ञान में आता है। तो कहते अत्यंत पी गयु होवाने लीधे, पी गयु है क्या, उसको सबको जान लिया उन्होंने, परम विविधता मा, परम ने कितनी विविधता होगी ना, एक एक पर्याय जुदी 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 जान रहे हैं, व्यापी ने रहेलू हुआ थी अनंत पदार्थों में विस्तृत छे तेथी सर्व पदार्थों ने जानवानी इच्छा नो अभाव छे। अभी जानने से कुछ रहा ही नहीं बाकी, अभी और जानो ऐसे कोई भी इच्छा तो है ही नहीं, वहां तो है तो ऐसे पूर्ण वितराग ही हुए है और बाद में केवल ज्ञान हुआ है, परंतु सब कुछ जानने में आता है तो कुछ जानने से परे कुछ रहा ही नहीं। अभी वो जानने की आकुलता होती है ना, नहीं समझे, टीवी देखते को नहीं देखते, हाँ मैच तो देखती होगी ना, तो बीच में ब्रेक आता है तो क्या करते हैं रिमोट लेके? क्यों? आंख खुलता जानने की, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ये जानो वो जानो वो जानो। अभी स्वाध्याय चल रहा है और बाद में बाहर कोई एक्सीडेंट की आवाज आई तो क्या होता है? अरे उठ के देखू तो इतना, अभी कैसा उठना, अभी उठ नहीं सकते, पराधीनता होगी, तो आकुलता चलती रहती यहाँ पर। देखो क्या कहते हैं, जानवानी इच्छा नहीं हुआ थी, आकुलता थती नहीं। चौथा पॉइंट, ज्ञान माथी सकल शक्ति ने रोकना रूप कर्म सामान्य निकली गये हुआ ने लीधे ज्ञान परिस्पष्ट प्रकाश वड़े प्रकाशमान इतले तेजस्वी स्वभाव में व्यापी ने रही हुआ थी विमल छे। क्या कहना चाहते? यानी ज्ञान को रोकने वाला जो हम कहें वो तो निमित्त का कथन है। ज्ञानावरण संपूर्ण नष्ट हो गया है और आत्मा की ज्ञान शक्ति संपूर्ण अपने से ही संपूर्ण खिल गई है। इसलिए कहते हैं कि कर्म सब निकल जाने के कारण ज्ञान परिस्पष्ट प्रकाश वड़े, परिस्पष्ट बिल्कुल स्पष्ट, परिस्पष्ट ने सभी ओर से प्रकाश वड़े प्रकाशमान स्वभाव में व्यापी ने रही हुआ थी विमल छे, तेथी सम्यकपणे जाने छे, ने बराबर जाने, जैसा वस्तु है जैसी वैसे जानते, उसमें कोई संशय विमोह विभ्रम कुछ नहीं है। अने ए रीते संशयादि रहितपणे जाणवाने लीधे आकुलता थती नथी। अनाकुल क्यों है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पांचवा पॉइंट, तथा जेमने त्रणे कालनु पोतानु स्वरूप युगपत समर्पित कर्यु छे एकी समय जणाव्यु छे। किसने जणाव्या? प्रमेय हो गए ना, सभी पदार्थों ने अपना स्वरूप समर्पित किया है। किसको? केवल ज्ञान। देखो फिर से, जेमने त्रणे कारणो पोतानु स्वरूप युगपित समर्पित करी छे, समर्पित यानी प्रमेय किया है, एक ही समय जणाव्यू छे, एवा लोकालोक मां व्यापी ने रही हुआ थी, यानी सभी पदार्थों ने अपना तीनों काल का स्वरूप समर्पित किया है, तो केवल ज्ञान लोकालोक में व्याप कर रहता है, अवग्रहादि रहित छे, यानी उसमें कोई क्रम नहीं है। अवग्रह यहाँ में क्या होता है? अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त का तो एक एक को जानते हुए फिर क्रम हो जाता है, यह तो एक समय में युगपत सब कुछ जान लिया है। तेथी क्रमे थता पदार्थ ग्रहण ना खेद नो अभाव छे, क्रम से होने वाले उसमें खेद होता है, उसका यहाँ अभाव है। आ प्रमाणे उपर्युक्त पांच कारणे प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल छे, तेथी खरेखर ते पारमार्थिक सुख छे। भावार्थ एक ही लाइन में है, क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान एकांत सुख स्वरूप छे, यानी उसमें थोड़ा दुख होगा ऐसे है ही नहीं, एकांत सुख स्वरूप है। हमें अभी जैसे आचार्य की टीका पढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पृष्ठ संख्या 84 पेज पर गाथा के नीचे लिखा है संस्कृत, वहां से पढ़ेंगे। हो 85 तभी मैं कह रही थी कि ऊपर लाइन कैसी नहीं आई। हाँ, क्योंकि जैसे नचर की दोनों ओर लाइन आती है, ब्रॉड लाइन। हाँ, पेज नंबर 85। एवं इस प्रकार हेयभूत इंद्रिय ज्ञान कथन मुख्यतया गाथा चतुष्टयेन तृतीय स्थलम गतम, यानी इंद्रिय ज्ञान हेयभूत है ऐसे कथन की मुख्यता से चार गाथाओं के द्वारा तीसरा स्थल गया। अथ यानी अभी अभेदनयेन पंच विशेषण विशिष्टम केवल ज्ञानम एव सुखमिति प्रतिपादयति। अभी अभेदनय से ज्ञान और सुख को अभेद करके बता रहे, अभेदनय से पांच विशेषणों से विशिष्ट ऐसा जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान ही सुख है ऐसा यहाँ कथन करते हैं। ज्ञान है वो सुख है अलग नहीं, वो ज्ञान केवल ज्ञान ही सुख है ऐसा बता रहे। जादम यानी जातम यानी उत्पन्नम, उत्पन्न हुआ है। किम कर्तृ कौन उत्पन्न हुआ है? तो नानम ज्ञान यानी केवल ज्ञान। कथम जातम कैसे उत्पन्न हुआ? स्वयं यानी स्वयमेव स्वयं से ही उत्पन्न हुआ है। पुनरूपी की विशेषता में भी उसके विशिष्ट वैशिष्ट बता रहे, एक तो स्वयं उत्पन्न हुआ, दूसरा कैसा है समत्तम यानी परिपूर्णम। पुनरूपी किम रूपम और किस रूप से है, अनंतत्थ विथडम विथडम अनंतार्थ विस्तीर्णम, अर्थ है पदार्थ अनंत पदार्थों में विस्तृत है। हाँ। पुनः किदृशम और कैसा है, विमलम संशयादि मल रहितम, संशय विभ्रम विमोह आदि मल से रहित है इसलिए उसको विमल कहा। पुनरपि किदृक और कैसा है, रह्यम तु उग्गहादिहिम अवग्रहादि रहितम चेति, अवग्रह या आदि से रहित है एवं इस तरह से। हाँ जरा देखना मोना की दवाई आई होगी। उसका एक बॉक्स है जो वापस करनी है दवाई है। अंदर पेज नंबर 85 पांचवें नंबर की लाइन, रहियम तो उग्गहादिम अवग्रहादि रहितम चेति एवं पंच विशेषण विशिष्टम यत केवल ज्ञानम, यानी ये पांच विशेषणों से विशिष्ट ऐसा जो केवल ज्ञान है वो क्या है, सुहंति एगंतियम बणीय। हाँ। तत्सुखम बणितम, उसको सुख कहा है। कथम भूतम कैसा, एकांतिकम नियमे नहीं थी, वो नियम से सुख है, एकांत से सुख है। तथा ही वही इस तरह से परनिरपेक्षत्वेन चिदानंद एक स्वभावम निज शुद्धात्मानम उपादान कारणम कृत्वा समुत्पद्यमानत्वात्। क्या कहते हैं, पर निरपेक्षत्वेन पर की अपेक्षा बिना चिदानंद एक स्वभावी निज शुद्धात्मा को ही उपादान कारण बनाकर, वो कुछ उसमें से मिलेगा वापस 200 कुछ में, फिर से परनिरपेक्ष होने के कारण चिदानंद एक स्वभावी निज शुद्धात्मा को उपादान कारण करके उत्पन्न होने से समुत्पद्यमानत्वात् उत्पन्न होने के कारण स्वयं जायमानम सत, वो स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। सर्व शुद्धात्म प्रदेशाधारत्वेन उत्पन्नत्वात् समस्तम, सर्व शुद्धात्म प्रदेशों के आधार से उत्पन्न होने के कारण समस्त है। उसको समंतम भी कहा था, उसी को समस्त कहा। सर्व ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद परिपूर्णम सत, सभी ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों से परिपूर्ण है। देखो गुणों में जितने अविभाग, अभी हमारा भी ज्ञान गुण में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, हर एक गुण के अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं और पर्याय क्या होती है, उसमें कुछ पर्याय में प्रकट हुए हैं। अभी हमारा ज्ञान कितना है, बहुत अल्प है, एक इंद्रिय की अपेक्षा ज्यादा है, अनंत गुणा है। तो उनके अविभाग प्रतिच्छेद से हमारे अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुण है, पर केवल ज्ञान कैसा है, जितने गुण में है वो सारे के सारे प्रकट हुए हैं पर्याय में, केवल ज्ञान। तो कहते सर्व ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद परिपूर्णम सत, यानी सभी अविभाग प्रतिच्छेदों से वो परिपूर्ण है। समस्त आवरण क्षयन उत्पन्नत्वात्, समस्त आवरण का क्षय, ज्ञानावरण आदि समस्त आवरण का क्षय होने से उत्पन्न होने के कारण समस्त गेय पदार्थ ग्राहकत्वेन, समस्त गेय पदार्थों को जानता है, ग्राहक होता है उसका, यानी उसको जानने के कारण विस्तीर्णम सत, वो विस्तीर्ण है, सब में फैला हुआ है। संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन, संशय विमोह और विभ्रम से रहित होने के कारण सूक्ष्मादि पदार्थ परिचित्ति विषये अत्यंत विशदत्वात् विमलम सत्। सूक्ष्म आदि पदार्थ, सूक्ष्म आदि में किसको लेना है लक्ष्मी? हाँ, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म पदार्थ है यानी जो परमाणु आदि, वो कैसे सूक्ष्म है। अंतरित है काल से अंतरित, काल से अंतरित है भूतकाल के भविष्यकाल के, और दूरवर्ती है अभी जो कोई स्वर्ग की बात है, नरक की बात है, अलोकाकाश की बात है, वो भी जानते हैं, क्षेत्र से जो दूर है। ये सूक्ष्मादि सभी पदार्थों का परिच्छित्ति विषय, उसके ज्ञान के संबंध में अत्यंत विशदत्व, वो अत्यंत विशद अत्यंत स्पष्ट ज्ञान होने के कारण वो कैसा है? विमल है। ख्याल में आते हैं ना विमल क्यों कहा? क्रम करण व्यवधान जनित खेद अभावात, वो खेदाभाव, बीच में डैश नहीं चाहिए, एक शब्द होना चाहिए, खेदाभाव यानी खेद का अभाव। क्या कहते हैं? क्रम, जब ज्ञान में क्रम पड़ता है तो वो खेद का कारण हो जाता है। करण यानी वो इंद्रिया, जो अन्य साधन, अन्य साधन है तो उसमें भी खेद है, क्योंकि वो साधन होने चाहिए ना, नहीं तो जानने की आकुलता बनी रहती है। ये ऐसा, इसमें कोई करण अन्य साधन की जरूरत नहीं है। व्यवधान यानी, व्यवधान यानी कुछ ब्रेक, उसमें कोई अड़थला, हाँ अड़सर जिसको हम कहते हैं, उसमें रोकने वाला कोई, जैसे व्यवधान किसका, ना कोई कर्मों का है ना कोई अन्य चीजों का है, बाधा कुछ नहीं आ सकती उसमें। व्यवधान जनित खेद, जैसे आप सीरियल देख रहे हैं अपने, कोई आपकी फेवरेट कोई होगा तो, और बीच में वो ब्रेक आता है ना, बीच में एडवर्टाइजमेंट होती है, तो क्या होता है? खेद होता है। यही कह रहे, व्यवधान आता है तो खेद हो जाता है, और देखते देखते लाइट चली जाए तो क्या होगा? आकुलता। अच्छा, उसी को खेद कह रहे हैं। क्रम करण व्यवधान जनित खेद अभावत, केवल ज्ञान में तो ऐसा कोई है नहीं, तो उसको खेद के अभाव होने के कारण अवग्रहादि रहितम च सत। और ये कैसे? अवग्रहादि भी रहित है और उसके कारण खेद का अभाव है। यद एवं पंच विशेषण विशिष्टम क्षायिक ज्ञानम, ऐसा ये जो पांच विशेषणों से युक्त जो क्षायिक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तद वह अनाकुलत्व लक्षण, अनाकुलत्व लक्षण वाला परमानंद एक रूप, परमानंद एक रूप पारमार्थिक सुखात संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेति, पारमार्थिक सुख से, सुखाते ने सुख से, पारमार्थिक सुख से ज्ञान भेद है कि अभेद है? यहां तो कहते भेद है। किस अपेक्षा से? संज्ञा, उनका नाम अलग है, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है सुख। संज्ञा लक्षण, ज्ञान का लक्षण जानना है, सुख का लक्षण तो परम आह्लाद अनाकुलता है, प्रयोजन दोनों का अलग अलग है। ऐसे भेद होने पर भी, पहले भेद बताया यानी सुख और ज्ञान दो चीजें भिन्न होने पर भी, निश्चय न निश्चय से देखे तो अभिन्नत्वात, अभिन्न होने से, निश्चय से वो अभिन्न है, उसके नाम जुदे है, लक्षण जुदे है, परंतु निश्चय से वो अभिन्न होने से पारमार्थिक सुखम बन्यते, यानी जो ऐसा जो क्षायिक ज्ञान है पांच विशेषण वाला, और वो पारमार्थिक सुख से संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि से उसमें भेद होने पर भी, हाँ संज्ञा संख्या वो उसमें आता है, द्रव्य और गुण में संख्या आती है, इसमें तो एक ज्ञान और एक सुख है ना, संख्या आदि में और भी जो कुछ आप निकाल सकते हैं, तो हाँ उसका उत्पत्ति का कारण, उसके गुण की अपेक्षा आदि में अन्य भी बताते नहीं हमें, आदि कह देते। निश्चय न अभिन्नत्वात्, निश्चय से अभिन्न है पारमार्थिक सुखम भण्यते इति अभिप्राय, यानी वो ज्ञान को ही पारमार्थिक सुख कहते हैं। हाँ, ये अभिप्राय, ज्ञान ही सुख है ऐसा कहा ना, निश्चय से ज्ञान है वही सुख है। अभी यहीं पर प्रवचन शुरू हो रहा है 85 पेज पर, देखो। हाँ, आत्मा में एकांत सुख है, परमे किंचित सुख तीन काल में नहीं है, पर की विषय वासना आदि सब दुख रूप है, लक्ष्मी मिलनी और राजी खुशी होना वह सब परिणाम दुख रूप है। ठीक है, अभी ये पांच विशेषणों की बात आई है वही फिर बताएंगे। स्वयं उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है कि स्वयं अपने आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा स्वयं ज्ञानमय है और वो स्वभाव में से उसके स्वभाव के ही लक्ष्य से उसकी उत्पत्ति होती है, स्वभाव में से उत्पन्न हुआ है तो प्रत्यक्ष जो है स्वयं उत्पन्न होने से कोई पर की अपेक्षा उसमें नहीं है। पर में किसको किसको लेना है, पर की अपेक्षा क्या क्या हो सकती है, इंद्रिया है, प्रकाश है, ज्ञानावरणादि का क्षोभम है, इस तरह अंतकरण वगैरह लिया था। किसी की अपेक्षा उसमें, हाँ उपलब्धि ने क्षोभम हो, संस्कार को भी लिया था, भगवान के उपदेश से भी परोपदेश लिया था ना वहां पर, भगवान के उपदेश से भी स्वयं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। हाँ, स्वयं उत्पन्न होने से वो सब उस निमित्त बनते हैं, वो तो इंद्रिय ज्ञान में बने थे, परोक्ष ज्ञान में। ये कैसा है, केवल ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान। तो कहते स्वयं उत्पन्न होने से एक बात, दूसरा समंत होने से, समंत अर्थात चारों ओर सर्व भागों में वर्तमान, सर्व आत्म प्रदेशों से जानता हुआ, समस्त पूर्ण संपूर्ण अखंड प्रत्यक्ष ज्ञान, संपूर्ण अखंड चारों ओर से देखता है, ये देखता है ना, जानता है के अर्थ में देखता है लिया। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट कौन से हो गए, स्वयं उत्पन्न हुआ और समंत लिया। अब तीसरा पॉइंट, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, कितना है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनंत पदार्थ में लोकालोक और द्रव्य गुण पर्याय जिसका आदि अंत नहीं उसको भी जानता है, उसमें फैला हुआ है ना, आत्म प्रदेश को छोड़कर बाहर कहीं नहीं है केवल ज्ञान, आत्मा के प्रदेश में उतने ही असंख्यात प्रदेशों में रहते हुए पूरे लोकालोक को जान लेवे, तो कहते जानने की अपेक्षा वो फैला हुआ ऐसा कहने में आता है। तो कहते उसको भी जानता है, ऐसा यह विस्तृत ज्ञान है। चौथा पॉइंट, विमल होने से, लो यह तो निर्मल है प्रत्यक्ष ज्ञान, सर्वज्ञपना केवल ज्ञान तो निर्मल है। और पांचवा पॉइंट, अवग्रहादि रहित होने से, अर्थात एक पदार्थ को जानना फिर उसे पकड़ना फिर विचार करना फिर निर्णय करना, पहले पकड़ना है ने अवग्रह हुआ, फिर विचार करना है ने यहां हो गए, निर्णय करना में अवाय हुआ, ऐसा उसमें है नहीं। 86 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, नीचे एकदम, ऐसी अवग्रहादि क्रिया रहित है। मति ज्ञान में अवग्रह यहां अवाय धारणा होती है, यह अवग्रह यहां अवाय धारणा रहित, वो ये दूसरा है क्या पहला है, ये फॉन्ट ऐसा ही है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है क्या, ह्रस्व है, यहाँ वाला यहाँ जो लिखा है वो दीर्घ है क्या ह्रस्व, ये मैं पूछ रही हूँ,
यहाँ जो लिखा है यह ह्रस्व है,
ये ह्रस्व है,
यहाँ है ना, बड़ा हो वेलंटी के साथ हो तो
कहाँ आया के, यहाँ वेलंटी वाला नहीं, क्यों नहीं, नहीं 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 यहाँ छोटा लिखा है परंतु
होता कैसा है?
ये छोटा दीर्घ कैसा लिखा उन्होंने?
और ये है ना जो गाथा उसमें इहा भी बड़ा है, नहीं ई बड़ा है,
ऐसा बड़ा होना चाहिए, यहाँ ये बड़ा होना चाहिए, थोड़ा उसको और गोलाकार करना चाहिए।
गाथा में भी नाम अच्छे,
नहीं नहीं वैसे एक्चुअली ये इसीलिए मैंने मैंने क्या कहा कि जरा ये पार्टी देंगे तो मैं समझूंगा, जरा मैंने स्लेट देना, स्लेट स्लेट देना। नहीं ये फॉन्ट कोई कोई अलग होते हैं। देखो ये होगा तो ह्रस्व हो गया और ये हुआ तो दीर्घ हुआ। अब ये दीर्घ उन्होंने ऐसा लिखा है क्या अच्छा लगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ह्रस्व और ये दीर्घ होगा। अगर ये छोटा किया है परंतु अगर ये दीर्घ भी हो सकता है, यानी दीर्घ ऐसा होना चाहिए, ये दीर्घ है। दीर्घ ये उनका फॉन्ट दीर्घ वाला ही होना चाहिए, यानी इहा वाला ई दीर्घ होता है बस इतना ही। हाँ ये दीर्घ ही लगता है, ठीक है। हाँ स्लाइट है मगर दीर्घ जैसा ही है। एटी फाइव पेज पर एक हमने करेक्शन की थी ऊपर संस्कृत।
देखो यहाँ में अवग्र इहा दी यहाँ ही बराबर लिखा
कहाँ पर?
अच्छा ये अच्छा यहाँ मैं यहाँ देखता हूँ, बाद में पीछे का पेज में वापस छोटा
नहीं यहाँ पे बड़ा है, आप पीछे छोटा है, इधर
छोटा। हाँ हाँ वो पीछे लिखता
है। हाँ यहाँ पर बराबर लिखा है।
हाँ यहाँ
यहाँ पे बराबर लिखा
है। एक मिनट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ। पेज नंबर 85 ऊपर से चौथी लाइन लास्ट वर्ड वो किद्दक हो या किद्रुक चाहिए ना?
किद्रुक।
वो द्र नहीं है वो
किद्दक हुआ है। हाँ किद्रुक 85 पेज चौथी लाइन लास्ट हमेशा वो द्रु।
और अभी आपका जो कुछ यहाँ यहाँ किधर है वो
नहीं, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। वहीं पर 85 पेज पर नीचे से तीसरी लाइन संस्कृत की वो क्रम करण व्यवधान जनित मिला खेदा भाव तो एक शब्द है उसमें डैश निकाल कर इकट्ठा करना उसको क्लब करो उसको। अब यहाँ जो
यहाँ देखो 59 में जो ई दिखाया है ना
अभी गुजराती जो है ना गुजराती हरिगीत उसी 85 पेज पर वहाँ जैसा इहा शब्द लिखा था।
हाँ।
वो किधर है?
वो
गाथा की सेकंड लाइन
वो
बराबर है।
हुँ।
अभी
अरे
वो उसका फॉन्ट वैसा है ऐसा लगता है मुझे मगर वो अगर नहीं होगा नहीं 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 होता क्योंकि आगे लेकर इंद्रिय ज्ञान इसलिए सब उन्होंने ही ऐसा ही निकाला है वहाँ पर।
अभी अगला कहाँ का बता रहे हैं आप?
आपको अन्य ई देखना है तो 89 पेज निकालो। अभी देखो असमंत होने से इतर द्वारों के ई ह्रस्व है वो और ह्रस्व ही होना चाहिए। इतर के बाद नीचे चौथी लाइन में इंद्रिय ज्ञान के लिए भी ई ह्रस्व है यानी वो इनका ह्रस्व ही है इसलिए वो ई ह्रस्व है। ये सारे ह्रस्व है और ह्रस्व ही होना चाहिए। और उसी में नीचे लेना पांचवा पॉइंट अवग्रह आदि सहित होने से अर्थात अवग्रह इहा इहा मध्य ई दीर्घ होना चाहिए इहा होता है वो। ये जहां जहां इहा में ई ह्रस्व है वहां दीर्घ होने चाहिए। अभी हर जगह हम बताएंगे नहीं परंतु वो दीर्घ होता है बस इतना समझो। चलो अभी हम पढ़ते हैं है ना समय है। देखो हाँ 89 पर आए 86 पर हाँ अवग्रह यहाँ पढ़ रहे थे ना हम 86 में प्रवचन लाइन के नीचे नीचे का पैराग्राफ मिला। अभी समझना कि यहाँ वाला ये दीर्घ होता है। पहली लाइन फिर पढ़ती हूँ। मति ज्ञान में अवग्रह यहाँ अवाय धारणा होती है। यह अवग्रह यहाँ अवाय धारणा रहित प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह नहीं केवल ज्ञान, भगवान को यह प्रत्यक्ष ज्ञान सुख रूप है और वहाँ एकांत से सुख है ऐसा कहा था, है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है। एकांतिक का अर्थ नीचे दिया है, पर यानी निश्चय से, नियत रूप से, नियम से।
दो मात्रा है, एक नहीं।
एकांतिक लिखा
है वहाँ, उन्होंने एकांतिक लिखा है।
एकांतिक बराबर है,
एकांत से एकांत हो जाता है, एकांतिक सुख है, बराबर है।
आई चाहिए क्या, ए चाहिए?
एकांतिक हम कहते पर एकांतिक भी बराबर है, एकांतिक लिखा है ना उन्होंने, एकांतिक सुख। ये कहाँ से लिया उन्होंने एकांतिक? अच्छा, अन्वयार्थ में लिया, एकांतिकम सुखम, वहाँ एकांतिक लिखा और यहाँ एकांतिक लिखा है। उन्होंने तीसरे पॉइंट में से लिया है ये एकांतिक, मूल में टीका में एकांतिक लिखा है और यहाँ उन्होंने एकांतिक लिखा है। हाँ, परंतु ये बोल्ड जो है ओरिजिनल टीका में से लिया है, टीका का तीसरा पॉइंट है वो, पांचवा पॉइंट। अवग्रहादि रहित होवाती प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख छे, और उसको यहाँ बोल्ड करते उन्होंने एकांतिक लिखा है, मूल में एकांतिक लिखा था। रॉन्ग नहीं है, परंतु एकांतिक हम एक में संस्कृत में उसको एकांतिक कहेंगे और हम गुजराती मराठी में एकांतिक कहेंगे, क्योंकि संस्कृत में देखो पेज नंबर 84 जयसेनाचार्य की नहीं, अमृतचंद्राचार्य की संस्कृत सेकंड लाइन मिला। प्रत्यक्ष ज्ञानम सुखम एकांतिकम इति निश्चियते। और वहां पर भी क्या होता है कि अ प्लस आई का भी आई डबल आई कर, हाँ आई प्लस ए का, हाँ जैसे परमानंद एक रूप कहते ना, परमानंद एक रूप, परमानंद एक रूप, परंतु इसे सुखम एकांतिकम लिया, वो भी एकांतिक ही लिखा है उन्होंने। हिंदी में हम एकांतिक कहते हैं, संस्कृत में एकांतिक कहा है। पढ़े आगे 86 पर नीचे का पैराग्राफ। प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है, एकांतिक का अर्थ नीचे दिया है, परिपूर्ण अंतिम अकेला सर्वथा सुख है। हम कहते हैं एकांत नहीं, वो सर्वथा हो जाता है। कथनचित सुख है और कथनचित दुख है, ऐसा अनेकांत नहीं है, एकांत सुख है। और दुख किंचित भी नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत को लोग थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, उसको अनेकांत ऐसा नहीं है, वो सुख है, दुख नहीं है, ये अनेकांत हुआ। हाँ, थोड़ा सुख है, किंचित सुख है, किंचित दुख है, वो ऐसा अनेकांत नहीं होता, ऐसा लोग समझते हैं।
और शुभ भाव से बंध भी होता है और धर्म भी होता है, वो क्या है?
उसको अनेकांत मानते हैं, पर ऐसा अनेकांत का स्वरूप ही नहीं है। यानी ऐसे में शुभ भाव से बंध ही होगा, धर्म बिल्कुल नहीं होगा, ये अनेकांत हुआ। हाँ। नीचे से तीसरी लाइन, किसी को लगे जैन में तो एकांत नहीं होता ना, तो कहते अरे यह एकांत है सुन तो सही। हाँ श्रीमद में आए ना, अनेकांत भी स्वरूप की एकता बिना, स्वरूप के आश्रय बिना, अपने आश्रय बिना अनेकांत भी यथार्थ नहीं होता। निज आश्रय के हेतु सिवाय अनेकांत होता नहीं, यहाँ कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है यह निश्चित होता है। एक आदमी यहाँ आया था, कहने लगा मैं तीर्थंकर हूँ। उनके पास कौन कौन आते होंगे ना। और उनके पास आया मिलने को। अरे कितना बुद्धू होगा। चार कर्म का नाश हुआ है, मेरे भी अब व्यवस्था कर दो तीर्थंकर। क्योंकि तीर्थंकर को चार घाती कर्म का नाश होता है और चार अघाती बाकी है, तो भगवान के पास भी पैसा नहीं है तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। पागल था। कौन से गांव का था? प्रतापगढ़ का था, पागल जैसा। लेकिन ऐसे पागल नहीं था, मानता था कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है और मेरे केवल ज्ञान में साधन वाले सब तैयार हो गए हैं। अरे तुझे मिथ्यात्व का भ्रम है, केवल ज्ञान है, अभी उसके रहने की और खाने की क्या जरूरत है। वस्त्र सहित मुनिपना होता नहीं तो केवल ज्ञान कहाँ से हो गया, मिथ्या दृष्टि। यह भी सुना फिर वंदन करे, ऐसी भ्रमणा। गुरुदेव को वंदन किया फिर, प्रतापगढ़ का था।
मुझे दो बातें बतानी है।
हाँ।
हमारे यहाँ भी ऐसा एक व्यक्ति आया था, पति पत्नी दोनों ही थे, तो मुझे तो कर्म नष्ट होते हुए निर्जरित होते हुए दिखाई देते, ऐसे जैसे हम रोटी की ऐसा ढेर बनाते हैं उसमें से रोटियां कम होती है, वैसे कर्म जाते हुए मुझे दिखता है, ऐसा बोले। तो ये तो चार घाती कर्म का नाश करके आया है।
वो तो कहता है मैं पृथ्वी का एक था तो सब लोग मुझे दबाते थे तो मुझे गुस्सा आता था ऐसे। पता चला ना कौन था। यहाँ कहते हैं नीचे 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 लास्ट लाइन कि एकांत सुख तो केवल ज्ञान में है। हाँ 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 विशेष कहेंगे अभी यहाँ आते। एकांत सुख है ना, वो तो निश्चय नियम से सर्वथा सुख ही है, ज्ञान है वही सुख है कहा, सुख स्वरूप भी नहीं कहा, ज्ञान है वही सुख है, वो एकांत से सुख है कहा, सम्यक एकांत। इसीलिए वो सारे पांच विशेषण बताए ना, अनाकुल स्वरूप है और अनाकुलता ही सुख है, इसलिए ज्ञान ही सुख है ये कह रहे। प्रवचन सार गाथा 59 गुजराती में, यहाँ तो हिंदी है ना। 59 मूल गाथा में तो यह लेना है, टीका फिर से लेते हैं। एक, स्वयं उत्पन्न होने से अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वह अपने से स्वयं उत्पन्न होता है, अपना केवल ज्ञान अपने से स्वयं उत्पन्न होता है, एक बात हुई। दूसरी बात, समंत होने से चारों ओर से अपने से उत्पन्न होता है, असंख्य प्रदेश में है ना, समंत अर्थात चारों ओर सर्व भागों में वर्तमान, सर्व आत्म प्रदेशों से जानता हुआ, समस्त संपूर्ण अखंड केवल ज्ञान के ऊपर रख ये देना, मात्रा देना। यहाँ कहना है कि केवल ज्ञान सुख है, यह लेना है। इस गाथा का विषय क्या है? केवल ज्ञान है सुख है, वह सुख है, यह लेना है। इंद्रिय ज्ञान दुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान सुख है, तो अतीन्द्रिय सुख का साधन अपना जो निर्विकल्प अपना आत्मा जो निर्विकल्प अखंड ज्ञायक है उसकी दृष्टि करके अनुभव करना यह अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का उपाय है। वही अतीन्द्रिय ज्ञान है, वही अतीन्द्रिय सुख भी है, क्योंकि अनुभव करना वो तो ज्ञान की पर्याय का नहीं, वही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है, प्राप्ति का उपाय है। अब कहते अनंत पदार्थों में विस्तृत, अर्थात केवल ज्ञान तो अनंत पदार्थों को जानता है, इसलिए वो अनंत पदार्थों में विस्तृत है, फैला हुआ, ऐसा कहने के हमने क्या वो सर्वगत कहा था उसको। ज्ञान कहीं बाहर नहीं जाता है पदार्थों की ओर, ज्ञान तो ज्ञान में है परंतु वो सबको जानता है, तो सब में फैला हुआ है ये कहने में आता है। विमल अर्थात निर्मल है, अवग्रहादि रहित होने से प्रत्यक्ष है। अवग्रह यहाँ आदि जो मति ज्ञान के भेद है, क्रम है, इस क्रम से रहित प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है। एकांतिक अर्थात परिपूर्ण, अंतिम, अकेला, सर्वथा, यह निश्चित होता है, क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है, और यह अनाकुलता सारे ज्ञान पर घटित हो गए। क्या कहते हैं यहाँ अनाकुलता लक्षण, ज्ञान पर अनाकुलता सब घटित कह रहे हैं, क्योंकि पांच लक्षण बताए हैं और उसके कारण ज्ञान अनाकुल है ये बात नक्की की, तो अनाकुलता तो सुख का लक्षण है, इसलिए केवल ज्ञान है वही सुख है ये बात बता रही है। ख्याल में, ज्ञान में अनाकुल लक्षण बता दे, ज्ञान अनाकुल क्यों है वो उनके पांच पॉइंट्स बताए, और सुख का लक्षण तो अनाकुलता है, इसलिए ज्ञान है वही एकांत से सुख है ये कह रहे हैं यहाँ पर। यह लिखा ना, यह निश्चित होता है क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। पांचवे लाइन में आए हम, इंद्रिय ज्ञान है, शुभ राग है, अशुभ राग है, वह तो दुख रूप ही है। तीन अलग अलग लिया, अभी तो हम शुभ अशुभ राग तो दुख रूप, राग है वो दुख रूप है कहते थे, अब यहाँ इंद्रिय ज्ञान भी दुख रूप है, क्यों? वो आकुलता वाला है, उसमें कैसी कैसी आकुलता वो हमने देखे थे, ये स्वाधीन है, स्वयं से उत्पन्न होता है तो पराधीन है, ऐसे पांच पॉइंट उसमें भी लिए थे। परंतु देखो, इंद्रिय ज्ञान भी दुख रूप है, शुभ राग अशुभ राग के शुभ उपयोग अशुभ उपयोग है, वह तो आकुलता उत्पन्न करने वाली चीज है, राग है ना, इसलिए यह इंद्रिय ज्ञान है, यह ज्ञान तो अपनी पर्याय में होता है, परंतु पर्याय में इंद्रिया, यह जड़ इंद्रिया आदि निमित्त है, इस निमित्त के कारण पराधीन है, और पराधीनता के कारण वह दुख रूप है। शुभ शुभ राग है और राग है वो दुख है, प्रकट दुख देना है वो तो मालूम है, परंतु यह इंद्रिय ज्ञान को भी दुख रूप क्यों कहा, तो वो कितने प्रकार से पराधीन है वो बताया है, और उसके कारण वो आकुलता वाला है। इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ, पाठ यह है, पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण इंद्रिय ज्ञान पर के द्वारा, अर्थात ये पांच जड़ इंद्रियां है, इन पर के द्वारा इंद्रिय का ज्ञान होता है, वो निमित्त होता है ना उसके अंदर, ज्ञान होता है पर्याय में, परंतु पर के द्वारा इंद्रिय के द्वारा अंदर ज्ञान होता है, द्वारा होता है नहीं, वहां निमित्त पड़ता है उसका, यह ज्ञान दुख रूप है, पराधीनता आ गई ना उतनी। दूसरा पॉइंट, असमंत होने से, केवल ज्ञान तो समंत था, यह असमंत है, अर्थात सर्व प्रदेशों में उसका प्रकाश नहीं है, इसलिए वो खंड खंड भी कहा ना, एक एक इंद्रिय एक एक अपने अपने विषय को जानती है, इतर द्वारों के आवरण के कारण असमंत है ना, पूर्ण नहीं है, इतर द्वारों के आवरण अर्थात अंदर कुछ एक आवरण है और कुछ एक प्रदेश खिले है, विकसित हुए है, बाकी तो आवरण है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है। अभी उसकी चर्चा की थी विशिष्ट इंद्रिय के संबंध में, वहाँ तो उसका ग्रहण होता है वर्ण आदि का, अन्य आत्म प्रदेशों से वहाँ उनका ग्रहण नहीं होता। हाँ, वो आत्म प्रदेश वहीं पर आ गए तो वहाँ से उसका ग्रहण होगा प्रदेश, हाँ, पर अन्य जगह से वो नहीं होगा। ये लिमिटेशन है उसके अंदर, इसलिए दुख रूप है। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। मात्र कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ, यानी सभी पदार्थों को नहीं जान सकते एट ए टाइम, तो कुछ ही पदार्थों को जानेंगे। अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण दुख रूप है। कुछ एक पदार्थ जानता है, दूसरे को नहीं जानता है, ऐसी इच्छा के कारण दुख रूप है, कठिन बात है। बाकी पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे, अभी यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नहि सदा देत हो। नलिन भाई,
नमो आर्यता नमो सीता नमो आय नमो वैद्याय नमो वैद्य नमो रेन्द्र नमो आर्यता।